Hare Krishna. Our very good fortune to hear today a very special lecture by His Grace Rukmini Krishna Prabhuji on the appearance day of Srila Narottam Das Thakur Mahashaya today on 30th of January 2010.
Bhagavate Vasudevaya. Vasudevaya.
Om Namo Bhagavate Vasudevaya.
Om Namo Bhagavate Vasudevaya.
Om Namo Bhagavate Vasudevaya.
Hare Krishna. Aaj bahut hi pavitra divas hai. आज श्री नरोत्तम दास ठाकुर जी का प्राकट्य दिवस है. तो अभी हमने जो भजन पढ़ा, तो ये भजन नरोत्तम दास ठाकुर जी द्वारा लिखा हुआ वैष्णव विज्ञप्ति है, जिसका हम अनुवाद पढ़ेंगे. एक बार करुणा करो वैष्णव गोसाई. हे वैष्णव ठाकुर, आप मुझ पर एक बार कृपा कीजिए, क्योंकि पतितों का भी पावन करने वाला आपके अतिरिक्त दूसरा और कोई नहीं है. किसकी शरण में जाने पर पाप दूर हो, अर्थात केवल मात्र आप ही ऐसे दयालु हैं. आप जैसा दयालु किसे और कहां मिलेगा. भगवती गंगा जी का स्पर्श करने के बाद ही वे पवित्र करती हैं, परंतु आपका तो ऐसा अद्भुत प्रभाव है कि आपके दर्शन मात्र से ही पतित से पतित व्यक्ति भी सब प्रकार के पापों से मुक्त हो जाता है. हे वैष्णव ठाकुर, श्री हरि के चरणों में किसी का अपराध होने पर हरि नाम इस अपराध को नष्ट कर सकता है, परंतु आपके श्री चरणों में अपराध होने पर उस अपराध से कदापि निस्तार नहीं हो सकता. आपके हृदय में सर्वदा गोविंद विराजमान रहते हैं. स्वयं भगवान भी कहते हैं कि वैष्णव लोग मुझे प्राणों के समान प्यारे हैं. अतः मैं जन्म जन्मांतरों में आपके चरण धूल की ही कामना करता हूँ. नरोत्तम को अपना दास जानकर इस पर कृपा कीजिए. तो ये नरोत्तम दास ठाकुर जी प्रार्थना कर रहे हैं. और आज बहुत विशेष दिन है. भगवान समय समय पर अवतार लेते हैं, प्रकट होते हैं धर्म की स्थापना करने के लिए. और भगवान गीता में बताते हैं, जन्म कर्म चमे दिव्यम एवं योवेदि तत्वता त्यक्त्वा देहं पुनर्देहं नैति मामेति स अर्जुन. तो भगवान का प्राकट्य और भगवान की लीलाएं दिव्य हैं. जो भगवान की प्राकट्य और उनके कर्मों की दिव्यता को समझ जाता है, भगवान बोलते हैं दोबारा इस भौतिक जगत में नहीं आता. जिस प्रकार से भगवान का प्राकट्य दिव्य है, इसी प्रकार से जो भगवान के नित्य परिकर हैं, नित्य पार्षद हैं, उनका प्राकट्य भी दिव्य है. वास्तव में भगवान प्रकट होते हैं धर्म की स्थापना करने के लिए. और धर्म की स्थापना के लिए, यानी कि धर्म की स्थापना का अर्थ है कि एक धर्मम तो साक्षात भगवत परिणतम. धर्म क्या है? भगवान की वाणी, भगवान के शब्द. तो ये हमें प्राप्त होते हैं, भगवान की वाणी प्राप्त होती है परंपरा से, एवं परंपरा प्राप्तम. तो जब भगवान प्रकट होते हैं, इसका एक अर्थ यह है कि भगवान गुरु परंपरा की स्थापना करने आते हैं. जब इस गुरु परंपरा में कुछ त्रुटि होती है, तो भगवान या तो स्वयं प्रकट होते हैं या अपने निकट नित्य सिद्ध परिकर को भेजते हैं, जो कि इस सिद्धांत की स्थापना करते हैं. तो इसी ढंग से भगवान श्री कृष्ण आए 5000 वर्ष पूर्व, उन्होंने भगवद्गीता का संदेश दिया. इस संदेश को अपने जीवन में कैसे उतारना है, ये सिखाने के लिए स्वयं चैतन्य महाप्रभु के रूप में आए. चैतन्य महाप्रभु केवल 48 वर्ष धराधाम पे रहे. आप चैतन्य महाप्रभु जो कृष्ण प्रेम वितरित करने आए थे, इस प्रेम को आगे वितरित करना है, बांटना है. तो महाप्रभु तो चले गए 48 वर्ष के बाद, और आगे 10,000 साल तक ये स्वर्ण युग चलना है. तो समय समय पर नित्य परिकर आएंगे. तो इसलिए मुख्य आचार्य आए नरोत्तम दास ठाकुर. और नरोत्तम दास ठाकुर बहुत ही विशेष विभूति हैं. तो ये जो आविर्भाव दिवस है, आज प्राकट्य दिवस है, हमें मनन करना चाहिए कि दिव्य है, बहुत दिव्य कारणों से उनका प्राकट्य हुआ है. वो दिव्य कारण ये है, धर्म की स्थापना करना, यानी कि हम तक चैतन्य महाप्रभु की जो धरोहर थी प्रेम को पहुंचाना, तो इसलिए उनका प्राकट्य हुआ है. हम लोगों का जन्म होता है इसका कोई कारण नहीं होता, कारण होता है हमारे कर्म बंधन। पिछले जन्म में हमने जो कर्म किए हमें जन्म लेना ही पड़ता है, हम बद अवस्था में। लेकिन जो नित्य परिकर जन्म प्रकट होते हैं उनके पीछे एक उद्देश्य होता है, धर्म की स्थापना करना। तो आज के दिन माघ पूर्णिमा के दिन नरोत्तम दास ठाकुर जी प्रकट हुए 1534 में, जिस साल महाप्रभु अप्रकट हुए थे, खेतुरी गांव में, जो कि इस समय बांग्लादेश में है, पूर्वी बंगाल में है। और इनके प्रकट होने से पहले सबसे पहली बात रुचिकर घटना क्या हुई कि जब चैतन्य महाप्रभु अपने पार्षदों के साथ वृंदावन जा रहे थे तो रामकेली गांव में रुके थे, वहां पर रूप और सनातन से मिलना था। तो जब रामकेली गांव में रुके तो एक जगह रुककर महाप्रभु ने देखा पद्मा नदी बह रही है और पद्मा नदी के उस पार खेतुरी गांव है। तो पद्मा नदी को देखकर महाप्रभु जोर जोर से भावेश होकर हो नरोत्तम, हा नरोत्तम कहकर चिल्लाने लगे। तो महाप्रभु को भावेश में कई बार भक्तों ने देखा था, और नित्यानंद प्रभु तो महाप्रभु से पहले ही सुन चुके थे, महाप्रभु पहले कई बार नरोत्तम नरोत्तम पुकार चुके थे। नरोत्तम का अर्थ है नरों में श्रेष्ठ। तो नित्यानंद प्रभु और उनके पार्षद जानते थे कोई ऐसा कोई भक्त आने वाला है, लेकिन आज जो महाप्रभु का भावेश था बिल्कुल असीमित था, वो रुक ही नहीं रही था, और महाप्रभु की आंखों से अश्रुधारा बह रही थी और पागलों की तरह इधर उधर भाग रहे थे और मूर्छित होने ही वाले थे। तो नित्यानंद प्रभु ने महाप्रभु को रोका कि महाप्रभु संभालिए अपने आप को। तो उन्होंने महाप्रभु ने बताया कि बहुत जल्दी ही वो आने वाला है। उन्होंने बोला कि मेरा जीवन क्या है, कीर्तन, और अभी जो नरोत्तम आएगा वो इस कीर्तन की सुरक्षा करेगा, और मैं अपना जो प्रेम है उस नरोत्तम को देकर जाऊंगा। तो उन्होंने बताया कैसे, बोले महाप्रभु ने बताया कि जो प्रेम है कृष्ण प्रेम मैं पद्मा नदी को दूंगा, और समय आने पर ये पद्मा नदी इस प्रेम को नरोत्तम को देगी। तो देखिए क्या योजनाएं बनाते हैं भगवान। तो अगले दिन सब भक्त लोग कीर्तन करते हुए गए पद्मा नदी के पास, कीर्तन किया, और कीर्तन करके जब महाप्रभु पद्मा नदी में प्रवेश करते हैं तो उस पद्मा नदी में बाढ़ सी आ जाती है, और इतनी बाढ़ आती है कि उनको संभालना मुश्किल है, क्योंकि महाप्रभु ने क्या दे दिया नदी को, कृष्ण प्रेम। तो जब किसी के देह में कृष्ण प्रेम के लक्षण प्रकट होते हैं तो जैसे अष्ट सात्विक विकार आते हैं, तो नदी अपने आप को संभाल नहीं पा रही। तो उसके बाद पद्मा नदी अपने व्यक्तिगत रूप में महाप्रभु के सामने प्रकट होती है और बोलते हैं कि मैं इस प्रेम को किसको देना, मैं कैसे पहचानूंगी। तो महाप्रभु ने बताया कि जब वो सही पात्र आएंगे, नरोत्तम आएंगे, तो जैसे ही वो आप में प्रवेश करेंगे तो आप को एक इतने आंतरिक रूप से आनंद की प्राप्ति होगी कि आप अपने आप को संभाल नहीं पाएंगे, तो उस व्यक्ति को आप ये प्रेम दे देना। तो ऐसा ही हुआ। तो इस ढंग से फिर नित्यानंद प्रभु पद्मा नदी की सुंदरता से इतने आकर्षित हो गए, तो नित्यानंद प्रभु बोले कि मैं खेतरी छोड़ के जाना नहीं चाहता। तो महाप्रभु ने बोला अब तो चलना पड़ेगा, समय आएगा, क्योंकि आप तो आदि गुरु हैं, आप ही नरोत्तम को बताएंगे कि कब पद्मा नदी में प्रवेश करना और प्रेम प्राप्त करना है। तो महाप्रभु ने नित्यानंद प्रभु जी को भी सेवा दे दी। तो उसके बाद जब माघ पूर्णिमा का दिन नरोत्तम प्रकट होते हैं, श्री श्री राधा राधिका रमन जी की जय, श्री श्री कृष्ण बलराम की जय। तो इनके पिता का नाम था कृष्णानंद दत्त और ये राजा थे, नरोत्तम दास ठाकुर जो थे राजकुमार थे, और जात से ये कायस्थ थे, और माता का नाम था नारायणी देवी, पिता का नाम था कृष्णानंद दत्त। और जब इनका जन्म हुआ तो जब बच्चे को पहली बारी अन्न खिलाया जाता है तो अन्नप्राशन रीति होती है, तो इनके आगे लाके अन्न रखा गया, तो सब लोग परेशान हो गए, ये अपना मुंह मोड़ लेते थे, अन्न खा ही नहीं रहे थे। सबने बोला क्या हो गया, बच्चा अन्न नहीं खा रहा। तो फिर क्या हुआ, एक वैष्णव आए और उन वैष्णव ने जब पहले भगवान श्री कृष्ण को अर्पित किया हुआ भोग था उसको प्रसाद जब उनके आगे रखा तो तुरंत नरोत्तम ने क्या किया, प्रसाद को स्वीकार कर लिया। तो इससे क्या हुआ कि बचपन से ही उन्होंने बता दिया कि मैं केवल क्या लूंगा, केवल कृष्ण प्रसाद। हम अपने साधारण बच्चों को देखते हैं, जो साधारण बच्चों की चेतना होती है वो अन्नमय चेतना होती है, कुछ भी नजर आते हैं मुंह में डाल देते हैं, है ना। नरोत्तम साधारण शिशु नहीं है, उन्होंने केवल कृष्ण प्रसाद की पहचाना, उसी को स्वीकार करेंगे। तो उन्होंने केवल कृष्ण प्रसाद स्वीकार किया अन्नप्राशन के समय, और इनके अंदर महापुरुष के सारे लक्षण थे। लंबी लंबी भुजाएं थी, सुंदर आंखें थी, इनका रंग श्याम वर्ण का था, और ये श्रुतिधर थे, बिल्कुल वैदिक शास्त्र में पारंगत, एक बार सुनने से सब कुछ याद हो जाता था। तो इनके पास वहां पे इनके गांव में एक भक्त थे जिनका नाम था कृष्णदास, उनसे ये नित्य गौर कथा सुनते थे, और गौर कथा श्रवण कर करके ये महाप्रभु के प्रेम में पागल हो चुके थे। बस प्रतीक्षा कर रहे थे कि कब मैं महाप्रभु के सिद्धांतों पर अपना जीवन निर्वाह करूंगा। जब इनकी आयु 12 वर्ष की हुई तो ये बहुत विवल रहते थे कि कब मैं महाप्रभु की शिक्षाओं पर अपने जीवन को धारित करूंगा, पूर्ण रूप से समर्पित हो जाऊंगा। तब इनके स्वप्न में कौन आए? नित्यानंद प्रभु। तो नित्यानंद प्रभु ने इनके वक्षस्थल पर हाथ रखा और बोला कि नरोत्तम, चिंता मत करो, अब समय आ गया है, कल आप जाना और पद्मा नदी में स्नान करना और फिर आपको कृष्ण प्रेम प्राप्त हो जाएगा। तो पूरी रात ये जय निताई जय निताई जय निताई करते रहे। प्रेमविलास ग्रंथ में बताया गया है कि जो नरोत्तम जी हैं वो नित्यानंद प्रभु के भाव के अवतार हैं। अभी हमने कुछ दिनों पहले नित्यानंद प्रभु की शिव बनाई, नरोत्तम दास ठाकुर जी नित्यानंद प्रभु के जो भाव है उसके अवतार हैं। जब महाप्रभु हान रोतम कह रहे थे और आंखों से अश्रुधारा बह रही थी, तो नित्यानंद ने पूछा कि आप इतना क्यों रो रहे हैं? तो उन्होंने बोला कि जब तुम मेरे को मिलने पुरी आ रहे थे तो तुमने जितने भी अश्रु बहाए उन सबको मैंने इकट्ठा कर लिया, बांध के रख लिया, और ये सब का सब मैं नरोत्तम को दूंगा, ये प्रेम। तो देखिए भगवान क्या योजनाएं बनाते हैं अपने भक्तों के लिए। तो अगले दिन नरोत्तम गए पद्मा नदी के पास, और जैसे उन्होंने स्नान प्रवेश किया नदी में, पद्मा नदी में बाढ़ आ गई, और पद्मा नदी समझ गई कि हाँ अब यही वही भक्त आ गए हैं, असली पात्र आ गए हैं जिनको मैंने ये कृष्ण प्रेम देना है। और उसके बाद क्या हुआ कि स्वयं उस नदी में से प्रेम मूर्तिमान गौरांग महाप्रभु प्रकट हुए। गौरांग महाप्रभु की, अब देखिए गौरांग महाप्रभु उस समय तक अप्रकट हो चुके थे, उनको 12-13 साल हो गए थे अप्रकट हुए हुए। तो स्वयं गौरांग महाप्रभु प्रकट हुए और उन्होंने उस बालक नरोत्तम का प्रगाढ़ आलिंगन कर लिया, और जब प्रगाढ़ आलिंगन किया धीरे धीरे क्या हुआ, जो श्याम वर्ण के नरोत्तम थे वो धीरे धीरे गौर वर्ण के हो गए, और उसके बाद महाप्रभु ने स्वयं उनके हृदय में प्रवेश किया। और उसके बाद बताइए जब महाप्रभु उनके हृदय में प्रवेश कर गए तो नरोत्तम पागल हो गए, हा गौरांगा हा गौरांगा हा कृष्ण कहकर नाच रहे। अब उनके माता पिता सोच रहे हैं कि काफी समय हो गया स्नान करने, बालक वापस नहीं आया, तो ढूंढते ढूंढते बेचारे आए, तुमको दिखाई नहीं दे रहा उनका बालक कहाँ है, कि पहले नरोत्तम किस रंग के थे, श्याम वन के, अब गौन वन के, और पागलों की तरह कोई व्यक्ति नाच रहे। जब पास जाके देखा तो बोला ये अपना वही नारू है, उनका प्रेम सुनकर नारू कहते थे, नारू क्या हो गया तुम्हें? वो बड़े परेशान होकर पकड़ कर ले गए, और वो तो घर में भी हाँ गुरांगा हाँ गुरांगा, क्योंकि स्वयं महाप्रभु उनके हृदय में प्रवेश कर गए, इतना प्रगाढ़ आलिंगन किया, तो बड़े परेशान। तो उनकी माता ने पूछा कि बेटा क्या हो गया, क्यों इतना रो रहे हो? तो साफ साफ बता दिया कि माता आज स्वयं गौरांग महाप्रभु ने मुझे आलिंगन किया है, वो मेरे हृदय में प्रवेश कर गए हैं, अब मैं यहां नहीं रुक सकता, अगर आप मेरा भला चाहते हो मुझे जाने दो जाने दो। अब देखिए अगर माता पिता बच्चे से प्रेम करते तो क्या करते, जाने देना चाहिए था, लेकिन पारिवारिक आसक्ति होती है, कैसे छोड़ के जाने दें, है ना? बोला नहीं, तो उन्होंने पिताजी ने योजनाएं बनाई, अगर ये छोड़ के चला जाएगा इतना बड़ा राजपाट कौन संभालेगा। तो उन्होंने अपने ही राजमहल में अपने ही एकलौते पुत्र को कैदी बना दिया, बड़ा टाइट सिक्योरिटी कर दी, खबरदार ये बाहर जाए, इसको आसपास सिक्योरिटी गार्ड लगा दिए कि इसको बाहर नहीं जाना। और अब चिंता शुरू हो गई क्योंकि तो नाच रहे हैं, वो तो पागल होए जा रहे हैं, रोए जा रहे हैं रोए जा रहे हैं। तो उन्होंने सोचा इसको लगता है किसी भूत ने पकड़ लिया। तो यही होता है ना, तरह तरह के उपाय करते हैं किसी ना किसी ढंग से ये ठीक हो जाए। तो एक ओझा को बुलाए के ले गया जो भूत उतारते, तो ओझा आया, कहते हैं कोई खास बात नहीं है, ऊपरी हवा लग गई है कोई अभी ठीक कर देता हूं। तो इसको क्या करना होगा, अभी कुछ झाड़ पोछ किया और बोला इसको लोमड़ी खिलाओ, लोमड़ी लोमड़ी खिलाने से ठीक हो जाएगा। तो ये नरोत्तम जो बचपन से केवल प्रसाद खाते थे, वो लोमड़ी कहाँ खाएंगे, वो पागल हो गए, कैसे लोमड़ी खाऊंगा मैं, इसे तो और मेरा पाप बढ़ेगा, भूत और बढ़ेगा। तो कृष्णदास ने बोला ठीक है, उनके पिता ने बोला कृष्णानंद जी नहीं खिलाएंगे, लेकिन ये पागल हुए जा रहे थे। थोड़ा समय और बीता, तो स्वयं महाप्रभु इनके स्वप्न में आते हैं और महाप्रभु बोलते हैं कि घबराओ मत, अब तुम्हें वृंदावन जाना है और वृंदावन जाके तुम्हें लोकनाथ गोस्वामी से दीक्षा प्राप्त करनी है। और फिर से महाप्रभु ने उनका आलिंगन किया। तो जिस स्थान पे पद्मा नदी के स्थान पे जब महाप्रभु ने आलिंगन किया था उसको कहते हैं प्रेम तले घाट। आप देखिए कितने विशेष भक्त हैं, महाप्रभु आ रहे हैं और उनका आलिंगन कर रहे हैं और बोले निश्चिंत रहो अब तुम्हें वृंदावन जाना है। तो अब उनका जो प्रेम था, उनकी जो विहलता थी वो बढ़ती गई और जिससे अब रहा नहीं जा रहा घर में, लेकिन उनके पिताजी ने उनकी और सिक्योरिटी बढ़ा दी। और जब उनकी आयु लगभग 16 वर्ष की हो गई, पूरे बंगाल में वो प्रसिद्ध हो गए कि ये जो बालक है ये साधारण नहीं है, ये इसके पास भक्ति में बहुत ही अग्रसर है। तो कुछ लोग उनके पास आते थे, उनसे आशीर्वाद लेके जाते थे। तो वहां पे एक मुस्लिम गवर्नर था जय गिरधर करके, उसने बोला, क्योंकि ये राजा थे और मुस्लिम गवर्नर था, बोला कि अपने बेटे को भेजो हमें भी थोड़ा आशीर्वाद दें। तो अब वो जो राजा उनके पिता थे वो दुविधा में फंस गए, मना करते हैं तो कुछ गड़बड़ होगी क्योंकि वो मुस्लिम काजी है, वो गवर्नर है, और भेजूंगा तो उनको डर है कि ये भाग जाएगा। तो उन्होंने रिस्क लिया क्योंकि अब पॉलिटिकल रीजन है, भेजना पड़ेगा, तो भेज दिया। बस ये उनके लिए पर्याप्त था। तो वो वहां मिलने गए तो नरोत्तम को मौका मिला और नरोत्तम भाग पड़े। बिल्कुल किसकी याद आ रही है हमें, किसका स्मरण हो रहा है, रघुनाथ दास गोस्वामी। और बहुत तेजी से भागे, पीछे मुड़ के नहीं देखा उन्होंने, और गए कहां सीधा वृंदावन की ओर। वो हो सकते थे जा सकते थे, हम नवदीप भी आ सकते थे या पुरी में भी आ सकते थे, उनको मालूम था ये नजदीक पड़ता है, उनके पिताजी सबसे पहले नवदीप और पुरी में अपने सैनिकों को भेजेंगे। तो बहुत तेजी से भागे वृंदावन की ओर और जंगल से भागे जा रहे हैं। देखिए उस समय कहां थे वो, ईस्ट बंगाल में, बांग्लादेश जो आजकल है, और वहां से उनको आना है वृंदावन। कोई गाड़ी नहीं, कोई बस नहीं, कुछ नहीं, और भाग रहे हैं जंगलों से। और ये राजकुमार थे, बहुत कोमल, नंगे पैर भाग रहे हैं, और रास्ते में नंगे पैर भाग रहे हैं, इनके पाँव में छाले आ गए, कुछ खाने को नहीं है, कुछ नहीं है, लेकिन दृढ़ता थे। तो भजन में हम दृढ़ रहेंगे तो मुश्किलें तो जरूर आएंगी, लेकिन भगवान हमारे भजन में कई बारी कठिनाइयां देते हैं हमारी दृढ़ता को चेक करने के लिए, हम कितने डिटरमाइंड हैं। और जब तक हम दृढ़ नहीं होंगे आध्यात्मिक जीवन संभव ही नहीं है, और बिना डिटर्मिनेशन के आध्यात्मिक जीवन बिल्कुल नीरस हो जाता है। अगर समझ देखिए हमारे जीवन में हमने कोई डिटर्मिनेशन ही नहीं है, एकादशी का व्रत रखना है, चलो कोशिश करते हैं, अभी छोड़ दिया फिर भी रख लिया, कोई भी हम जब तक संकल्प नहीं लेंगे उस संकल्प को दृढ़ता से पूरा नहीं करेंगे हम आध्यात्मिक जीवन में प्रगति नहीं कर पाएंगे। तो कितने ही कठिनाइयां हैं लेकिन एक व्यवसात्मी का बुद्धि है कि जाना है। तो भाग रहे हैं नंगे पैर, कुछ खाने पीने की व्यवस्था नहीं है, कुछ रहने की व्यवस्था नहीं है, बस अब वृंदावन जाना है, महाप्रभु का आदेश है वृंदावन जाना है। तो जा रहे हैं तो रास्ते में भागते भागते कुछ खाया पिया नहीं, प्यास और भूख के कारण वो बेहोश हो गए, फिर उठे फिर भागने लगे। फिर क्या हुआ कि एक ब्राह्मण उनके सामने प्रकट हुए और ब्राह्मण ने बोला कि आप बहुत थके हुए लग रहे हो, ये दूध पी लो। तो उन्होंने दूध पिया और फिर थोड़ी सी उनको फिर निद्रा आ गई और सो गए। और निद्रा में फिर स्वप्न में उनके प्रकट होते हैं शिला रूप गोस्वामी और सनातन गोस्वामी। और वो बोलते हैं कि नरोत्तम तुम बहुत सौभाग्यशाली हो, ये जो ब्राह्मण भी तुम्हारे सामने आया था ये कोई साधारण ब्राह्मण नहीं, ये स्वयं चैतन्य महाप्रभु थे और ये अब तुम्हें दूध पिलाया है, अब तुम चिंता मत करो, अब तुम सीधा जाओ वृंदावन और जाके वहां जीव गोस्वामी और लोकनाथ गोस्वामी से मिला। तो देखिए स्वयं महाप्रभु उनको दूध पिलाने आए। और इसका और भी इसका एक महत्व है कि जो नरोत्तम दास ठाकुर हैं अपने नित्य सिद्धि में विलास मंजरी हैं और इनकी सेवा यही है, चंपकलता गोपी के अंतर्गत ये सेवा करते हैं और ये राधा कृष्ण को दूध की सेवा करते हैं। तो आज भगवान को मौका मिला कि तुम तो मेरे को रोज दूध पिलाते हो वहां पे, अब तुम्हें दूध की आवश्यकता है, मैं तुम्हें दूध पिला रहा हूं। तो भगवान से स्वयं दूध ग्रहण करके नरोत्तम दास ठाकुर फिर भागते हैं वृंदावन की ओर। तो वहां जब वृंदावन रास्ते में जब जैसे ही वो वृंदावन की जाना शुरू करते हैं दूध पीने के बाद, कुछ सैनिक वहां आ जाते हैं, ان کے پتا کے ذرا بھیجے ہوئے. تو نروتم داس ٹھاکر اب ان کے اندر شکتی آگی, بولے دیکھیے میں ایک ستی استری کی طرح ہوں, جس کا پتی کا ندھن ہو جائے تو ستی استری کو بھی پران تیاگ دینے چاہیے. تو حالانکہ اسے گھر والے اس کو روکیں گے, لیکن اس کا کرتویہ یہی بنتا ہے کہ وہ پران تیاگ دے. اس لیے اب میرے میں بھی اب پریما بھکتی کی اگنی میں جلنا چاہتا ہوں. اب گھر والے پارواری کا سکتی سے مجھے روکنا چاہیں گے, لیکن میرے لیے یہی اچھا ہے کہ میں اس پریما اگنی میں جل جاؤں. تو اتنا بڑی آرگومنٹ دیا, جو گارڈ تھے جو سیکیورٹی گارڈ تھے وہ بھی چپ چاپ ہو گئے, بولے بالکل بات تو ٹھیک کہہ رہے ہو. ان میں سے ایک جو سینک نے اپنی جیب سے کچھ پیسے بھی نکال کے دے دیے, بولے راستے میں ضرورت پڑے گی لینے لگا. تو یہ ہے پیورٹیز آف فورس, شدھ تھے وہ کہ انہوں نے جو سینک تھے ان کا بھی ہردے بدل دیا. اب وہ آرام سے گئے. جب متھرا میں پرویش کرتے ہیں تو متھرا میں وہ وشرام گھاٹ میں اسنان کرتے ہیں, پھر وہاں پہ ایک براہمن ان کو آمنترن دیتے ہیں کہ آئیے ہمارے گھر میں آپ اپنے ایک راتری گزاریے. تو اس براہمن ان کو بتاتے ہیں کہ دیکھیے آپ آ تو گئے اچھی بات ہے, لیکن روپ گوسوامی, سناتن گوسوامی, رگھناتھ بھٹ, کاشیشور پنڈت سب کا تیروبھاو ہو چکا ہے. تو یہ سنتے ہی بےچارے انہیں سے تو وہ ملنے آ رہے ہیں, تو بہت مورچھت ہو جاتے ہیں کہ میں کس سے ملوں گا, کس سے سیکھوں گا. اور جب مورچھت اوستھا میں ہوتے ہیں تو ان کو ایک آدھیاتمک درشٹی نظر آتی ہے, اور یہ سارے کے سارے وبھوتیاں روپ گوسوامی, سناتن گوسوامی, رگھناتھ بھٹ گوسوامی, کاشیشور پنڈت ان کے سامنے پرکٹ ہوتے ہیں اور ان کو آشواسن دیتے ہیں, گھبراؤ مت, ابھی جیو گوسوامی ہیں, ان کے پاس جاؤں. اور دیکھیے جس براہمن کے یہاں رکے تھے اس براہمن کو بھی وہ آواز سنائی دے رہی تھی کہ روپ اور سناتن گوسوامی نروتم داس ٹھاکر سے بات کر رہے ہیں. تو دیکھیے اگر ہم بھکتوں کو, بھکتوں کا ہم سیوا کرتے ہیں تو سیوا کرنے ماتر سے کتنا لابھ ہو جاتا ہے. اس براہمن نے ان کو کیول آمنترن دیا تھا کہ رات کو رکیں, اور اتنے مہان ویشنو تھے نروتم داس جی کہ سوئم روپ اور سناتن ان سے بات چیت کر رہے ہیں. تو اس ان باتوں کو اس براہمن نے بھی سنا. تو اس کے بعد وہ ورنداون میں جاتے ہیں, تو ورنداون میں سب سے پہلے وہ جاتے ہیں رادھا گووندیو مندر. تو رادھا گووندیو جی کے درشن کرتے ہیں, روپ گوسوامی کے دوارا بنا ہے مندر, تو درشن کرتے ہی وہ مورچھت ہو جاتے ہیں. ہم لوگ جب بھی باتیں سنتے ہیں بار بار مورچھت ہو جاتے ہیں, بار بار مورچھت ہو جاتے ہیں, ہمیں لگتا ہے کیا ہے, لیکن واستو میں یہی بھکتی ہے, پاگل ہونا یہ بھکتی ہے. پتا نہیں کب یہ استھتی ہمارے ساتھ آئے گی. یہ پاگلپن چاہیے بھکتی کے لیے. اور آج ہم نروتم آج ابھی بھاپ میں یہی پرارتھنا کریں. ہم چاہتے ہیں کہ ہم سچیت اوستھا میں ہیں, ہم جو اپنے آپ کو سوچے بھی ہم کانشیس ہیں, واستو میں ہم پاگلپن کی اوستھا میں, یہ بھوتک پاگلپن ہے. تو اصلی پاگلپن یہ ہے کہ بھگوان کے درشن, گووند دیو جی کے درشن کرتے ہی سوئم بھگوان ہے, شری کرشن ہے, درشن کرتے کیسے کوئی نارمل رہ سکتا ہے, سوئم بھگوان آ گئے تو مورچھت ہو گئے. لیکن ہم کھڑے رہتے ہیں, ہمیں کچھ فرق نہیں پڑتا. تو کب وہ استھتی آئے گی, ہمارا ہرد اتنا کومل ہو جائے گا کہ درشن کرتے نام سنتے ہی گورانگ بلیتے ہمیں پھلک شریرا, ہری ہری بولتے نائن ببے نیرا. کب وہ دن آئے گا, یہ نروتم داس ٹھاکر پرارتھنا کر رہے لال سمے پرارتھنا. تو گووند دیو جی کے درشن کرتے ہی نروتم جی مورچھت ہو گئے. پھر وہاں سے جیو گوسوامی آتے ہیں ان کو ملنے, اور سب لوگ آتے ہیں کیونکہ سب لوگ ان کی پرتیکشا کر رہے ہیں کہ نروتم آنے والا ہے. تو جیو گوسوامی نے دیکھ لیا, جیسے ان کو دیکھا سنہری رنگ کے, سولہ رنگ کے, سولہ ورش کے بالک, تو جیو گوسوامی جیسے ان کو دیکھا ان کو چیتنیہ مہاپربھو کا سمرن ہو گیا. تو سب نے بولا کہ یہ نروتم آ گیا, ان کی تو سب پرتیکشا کر رہے تھے, یہ اصلی نروتم آ گیا. اور لوک ناتھ گوسوامی جی کو ایک دن پہلے ہی چیتنیہ مہاپربھو سپنے میں آ کے بتا گئے کہ بھیا نروتم کو بھیج رہا ہوں, اس کو دیکھا دینی ہے آپ کو. اور لوک ناتھ گوسوامی جی نے سارے پربندھ کر کے رکھ لیے, انہوں نے بلایا نروتم کو اور اپنے ساتھ بٹھا کے پرساد کی ویوستھا پہلے کر کے رکھی تھی کہ اگلے دن نروتم آنے والے ہیں. کوئی ای میل نہیں تھی, کوئی فیکس نہیں تھا, کوئی ایس ایم ایس نہیں بھیجا تھا کہ میں آنے والا ہوں, پرساد کی تھالی رکھ لیتا, کچھ نہیں. مہاپربھو دیکھیے, مہاپربھو ایک میسنجر کا کاریہ کر رہے ہیں بھکتوں کے پسندتا کے لیے. پہلے سے لوک ناتھ گوسوامی کے سوپن میں آ کے بتا دیا کہ نروتم آنے والے ہیں. تو لوک ناتھ گوسوامی نے پورا ارینجمنٹ کر کے رکھا اور نروتم کو اپنے سامنے بٹھا کے پرساد کھلایا. تو پرساد گرہن کرنے کے بعد نروتم نے بولا کہ میں اس یوگی نہیں ہوں کہ آپ کے ساتھ بیٹھ کے پرساد پاؤں, کیونکہ اس لیے یوگی نہیں ہوں, کہتے میرے کوئی گرو ہی نہیں ہے. تو لوک ناتھ زور سے ہنسے, بولے آپ کے گرو نہیں ہے, آپ تو سوئم چیتنیہ مہاپربھو نے آپ کو کرشن پریم دیا ہے, वो तो आदि गुरु हैं, अब आपको किसी गुरु की आवश्यकता है? तो बोले नहीं, मैं बहुत निर्धन हूँ, मेरे में कोई योग्यता नहीं है और मुझे आदेश दिया है कि मैं आपको गुरु के रूप में स्वीकार करूं। तो लोकनाथ जी बोला ये तो संभव ही नहीं है, ऐसा तो मैं किसी को शिष्य बनाता ही नहीं। फिर भी उनको हतोत्साहित करने के लिए बोले, अगर आप शिष्य बनना भी चाहते हो तो शास्त्रों में तो कहा गया कम से कम एक साल तक नियमित रूप से जप करना चाहिए, तब देखिए। उन्होंने टाल दिया। चलो तो बोले ठीक है, अगर आप चाहते हैं एक साल जप करना तो करूंगा। ऐसे शिष्य जिनको पहले से प्रेम मिला हुआ है तो बिल्कुल एक साधक की तरह उन्होंने एक साल नियमित रूप से जप किया और प्रतिदिन आके वो लोकनाथ जी से श्रवण करते थे और छोटी छोटी सेवाएं करते थे, लेकिन लोकनाथ जी ने उनको दीक्षा नहीं दी। उसके बाद ये और दृढ़ हो गए। जैसे कि आप सब जानते हैं कि जहां वन में लोकनाथ जी आके मलमूत्र त्यागते थे तो नरोत्तम जो कि एक राजकुमार जाके उस स्थान को साफ करते थे अपने हाथों से और शुद्ध जल से साफ करते थे। एक दिन नहीं किया, चलो एक दिन हमें भी कई बार आवेश आया था कोई विनम्र सेवा कर देते हैं, दो दिन कर लेंगे, तीन दिन कर लेंगे, उसके बाद फिर बहाने लगाते हैं छोड़ो कोई और सेवा है। लेकिन निरंतर एक साल तक वो ये सेवा करते रहे कि जाते जहां लोकनाथ गोस्वामी जी आके मलमूत्र त्यागते थे उस स्थान को साफ करते थे। तो एक दिन उन्होंने पीछे से देख लिया छिप का लोकनाथ गोस्वामी ने, तो उन्होंने देखा कि नरोत्तम क्या सेवा कर रहे हैं। तो फिर भी लोकनाथ गोस्वामी जी ने उनको दीक्षा नहीं दी, तो महाप्रभु उनके स्वप्न में आए और उन्होंने लोकनाथ गोस्वामी को डांटा, क्या कर रहे हो, ये झूठी विनम्रता छोड़ो, मैंने बताया तो मैं दीक्षा देनी है, चुपचाप इसको दीक्षा दो, ये कौन सी झूठी विनम्रता, मैं कोई शिष्य नहीं बनाऊंगा। तो फिर अगले दिन ही उन्होंने नरोत्तम को बुलाया तो नरोत्तम ने बोला, देखिए मेरी तो वो स्थिति है, एक युवती पहले से चुन लेती है कि मैंने इस युवक से विवाह करना है और बेचारी आशा करती है कि उसके माता पिता इसकी आज्ञा दे दें। बोले मैंने तो आपको गुरु के रूप में स्वीकार कर ही लिया है और मैं आशा करता हूँ कि भगवान ये स्वीकार कर लेंगे और आप मेरे गुरु बनेंगे। तो लोकनाथ गोस्वामी ने उनका आलिंगन किया और उनको दीक्षा दी, राधा कृष्ण का मंत्र दिया, गायत्री दीक्षा दी। इसके बाद लोकनाथ जी ने बोला कि आप जीव गोस्वामी से शिक्षा प्राप्त करें। तो नरोत्तम भक्ति में आगे दिखा रहे हैं, ऐसे बढ़ रहे हैं। तो एक बार क्या हुआ कि उनके स्वप्न में एक वैष्णवी आती है, बहुत ही दिव्य विभूति, और वो बोलती है कि मैं तुम्हें राधा कृष्ण की अंतरंग सेवा देना चाहती हूँ। बोले कि मध्याह्न के समय कृष्ण आते हैं कुंज में और गोपियाँ उनकी सेवा करती हैं और उनको दूध उबाल कर देती हैं और सबसे मुख्य सेवा ये करती हैं चंपकलता गोपी, तो तुम उनकी सहायता करो। तो दूध उबालने की सेवा इनको मिली नरोत्तम जी को, जो कि विलास मंजरी की सेवा है। तो ये क्या करते हैं, मनन करते हैं कि दूध उबाल रहे हैं और जो कि राधा कृष्ण को देंगे। तो लकड़ियों के ऊपर दूध उबाल रहे हैं, तो दूध उबालते उबालते उबलता है और नीचे गिरना शुरू होता है और फिर ये जबरदस्ती उसको पकड़ते हैं। तो पकड़ते हैं तो क्या होता है, गरम गरम काठी को पकड़ते हैं तो हाथ जल जाता है। तो जब इनका मेडिटेशन टूटती है तो क्या देखते हैं कि वास्तव में इनके हाथ जले हुए हैं। तो ये जाते हैं, ये स्वप्न में आया तो जो स्वप्न आता है तो उन्होंने जाके पहले गुरु से लोकनाथ जी के पास गए और बताया। तो लोकनाथ जी ने क्या बताया इनके गुरु ने कि तुम बहुत सौभाग्यशाली हो, जो वैष्णवी आपके स्वप्न में प्रकट हुई थी वो कौन है, वो साक्षात राधा रानी है। जय रतन दास ठाकुर जी की, स्वयं राधा रानी ने आके उनको ये सेवा दी, क्या सौभाग्य है। स्वयं राधा रानी ने आके उनको बताया आपकी ये अंतरंग सेवा है। और जब उनके हाथ जले होते थे तो पूरे ब्रज में वो प्रसिद्ध हो गए कि इनके हाथ जले रहते हैं। क्यों, क्योंकि बार बार दूध उबालते हैं, दूध गिर जाते हैं, उन हाथों से पकड़ते हैं, हाथ जल जाते हैं। तो जब जीव गोस्वामी के पास गए तो जीव गोस्वामी से मिले, बोले आपसे शिक्षा प्राप्त करना चाहता हूं। तो जीव गोस्वामी जान के इनको छेड़ा, पहले ये बताओ ये हाथ कैसे जले। तो फिर उन्होंने बताया कि ऐसे जले। तो जीव गोस्वामी ने उनका आलिंगन कर लिया, बोले वास्तव में तुम विलास मंजरी हो और यही आपकी सेवा है। तो देखिए हम लोग ये बातें सुनते हैं तो एक अलग स्तर की बातें हैं, लेकिन बातों की हम नकल नहीं मार सकते। जैसा कि आजकल दिया जा रहा है कि हम किसी को भी बोल दें आप ये मंजरी हो, आप ये मंजरी हो, और हम भी मेडिटेशन करना शुरू कर दें, हाथ पा तो जलेंगे नहीं हमारे, कुछ ऊपर नोन लगा लें या कुछ ऊपर पट्टी बांध लें। तो ऐसे इतने नकल नहीं माननी। तो ये वैष्णव आचार्यों की जब जीवन चरित्र सुनते हैं तो ये नकल मारने के लिए नहीं है, इन जीवन चरित्र से हमें कुछ वैष्णव सिद्धांतों को ढूंढना है और उन वैष्णव सिद्धांतों को अपने जीवन में उतारना है। यही अंतर है अनुकरण और अनुसरण में. अनुकरण में बस नकल मार दें कि वो उन्होंने भी ऐसे मेडिटेशन किया था, हम भी ऐसा करेंगे. नहीं, हमने अनुसरण करना है कि क्या सिद्धांत है, उन सिद्धांतों को अपने जीवन में उतारने का प्रयास करना चाहिए. यही मतलब है महाजना यन गदा से पंथ, कि हम कैसे उनको फॉलो करें. तो जीव गोस्वामी के अंतर्गत इन्होंने शिक्षा प्राप्त की और वहां इनकी भेंट होती है श्यामानंद पंडित से और श्रीनिवास आचार्य से. जैसा भी जानते हैं कि बहुत प्रसिद्ध इनकी पहली बुक डिस्ट्रीब्यूशन पार्टी बनी और फिर ये पुस्तक वितरण के लिए, गोस्वामी ग्रंथों के वितरण के लिए बाहर भी भेजा गया और फिर वो गोस्वामी ग्रंथों का अपहरण होता है. राजा वीर हमवीर ने उनका अपहरण किया था. लेकिन नरोत्तम जी और श्यामानंद पंडित उड़ीसा की तरफ चले जाते हैं और श्रीनिवास आचार्य रुक जाते हैं वीर हमवीर जी के पास. तो ये दोनों घूमते घूमते पहुंच जाते हैं खेतुरी ग्राम में, जो कि इनका जन्म स्थान था. अब खेतुरी ग्राम में नरोत्तम वापस आते हैं तो सारे के सारे ग्रामवासी देखने को बहुत पसंद होते हैं कि उनका प्रिय नारू आ गया. सब उस समय तक फिर इनके जो एक कजन थे पिता के भाई के पुत्र संतोष दत्त, उस समय के वो राजकुमार थे, तो उन्होंने उनसे दीक्षा ली. राजा नरसिंह ने काफी लोगों को उन्होंने दीक्षा दी. प्रेमविलास ने बताया कि लगभग 123 इन्होंने शिष्य बनाए खेतुरी ग्राम में. फिर इनकी इच्छा उत्पन्न हुई कि जहां जहां महाप्रभु ने लीलाएं की मैं देख के आऊं, तो ये नवद्वीप में गए और नवद्वीप में जाके ये महाप्रभु के संगियों से मिले, शुक्लंबर ब्रह्मचारी से मिले और फिर श्रीवास ठाकुर के जो दो भाई थे श्रीनिधि और श्रीपति उनसे मिले. अद्वैता शांतिपुर में गए, शांतिपुर में अद्वैताचार्य जी के पुत्र थे अच्युतानंद उनसे मिले और हरदा में गए. फिर वहाँ जनवा माता से भी भेंट हुई, उनके पुत्र वीरभद्र से भी इनकी भेंट हुई. फिर पुरी में गए और पुरी में गोपीनाथ आचार्य से इनकी भेंट हुई. जितने भी संगी थे महाप्रभु के फर्स्ट साथ के या नेक्स्ट जनरेशन के उनसे इनकी भेंट हुई. फिर जब वापस ये जब आते हैं खेतुरी गांव में तो एक पत्र आया होता है इनके गुरु लोकनाथ गोस्वामी जी के हाथ से. तो उस पत्र में लिखा होता है कि आप खेतुरी गांव में अर्च विग्रह की स्थापना कीजिए और जो इनके शिष्य हैं उनको प्रशिक्षण दीजिए कि प्रतिदिन अर्च विग्रह की सेवा करें, क्योंकि तभी वो भक्ति में आगे बढ़ सकते हैं. तो फिर ये योजना बनाते हैं कि गौर पूर्णिमा उत्सव मनाया जाए और उस गौर पूर्णिमा उत्सव के दिन इन अर्च विघ्नों की स्थापना की जाए. तो चैतन्य महाप्रभु का प्रकट हुए काफी वर्ष हो गए थे लेकिन अभी तक गौर पूर्णिमा का उत्सव ढंग से नहीं मनाया जा रहा था. तो नरोत्तम दास ठाकुर जी का सबसे बड़ा योगदान है कि उन्होंने इस गौर पूर्णिमा उत्सव मनाना शुरू किया. और ये गौर पूर्णिमा महोत्सव था ये बहुत ही विशेष उत्सव था. तो उन्होंने 6 मुख्य अर्च विग्रह लिए. ये अर्च विग्रह क्या थे, इसमें थे एक थे गौरांग देव के, वल्लभी कांता, श्री व्रज मोहन, श्री कृष्णा, श्री राधा कांता, श्री राधा रमन. 6 अर्च विग्रह उन्होंने दिए और दूर दूर तक जितने भी वैष्णव गण थे उनको उन्होंने बहुत सुंदर आमंत्रण दिया और आमंत्रण दिया संस्कृत कविताएं लिखकर सबको आमंत्रित किया और सबके आने के और उनके ठहरने के बहुत ही विस्तार पूर्वक इन्होंने प्रबंध किए. तो दूर दूर से सब आ रहे थे. रघुनंदन ठाकुर आए, जानवा माता आई और अच्युतानंद जी आए, श्रीनिधि श्रीपति आए और सब जगन्नाथपुरी से और उड़ीसा से श्रीनिवास आचार्य और श्यामानंद पंडित, रामचंद्र कविराज, चार जितने भी वैष्णव थे सब आए. और उस समय इन सब वैष्णव के जो आचार्य माने जाते थे वो थी जानवा माता. देखिए कैसे सकाले योग नष्टा परंतु भगवान गीता में बताते हैं कि काल के प्रभाव से कैसे ज्ञान धीरे धीरे अप्रकट होता है. महाप्रभु को अप्रकट हुए अभी कुछ ही वर्ष बीते थे, अभी से ही अप सिद्धांत शुरू हो गए थे और गोड़िया वैष्णव में आपस में एक मत नहीं था, हर कोई अलग अलग सिद्धांत का पालन कर रहा था अब उसी समय से. और जानवा माता ने भी बहुत अच्छा उत्सव, इसी उत्सव के बहाने सारे वैष्णव गण इकट्ठे हुए और जानवा माता ने सही सिद्धांत स्थापित किया. और ये उत्सव एक अच्छा मौका मिला नरोत्तम दास ठाकुर जी को कि जो गोस्वामियों का सिद्धांत था वो बंगाल तक पहुंचा, क्योंकि अभी तक ग्रंथ नहीं पहुंचे थे वहां पे, ग्रंथ अप्रकट हो गए थे तो अभी तक ग्रंथ वहां नहीं पहुंचे थे. आप उस समय की स्थिति की थोड़ी सी कल्पना कीजिए कि कोई ऐसा कम्युनिकेशन नहीं था कि पुस्तकें प्रिंट हो रही हैं और हर जगह पढ़ रही हैं. जो षट गोस्वामियों ने सिद्धांत स्थापित किया वृंदावन में, जब बंगाल के वैष्णव थे उनका भी इतना इनका मालूम नहीं था कि क्या सिद्धांत स्थापित हुआ है. तो तो वो अपने ही हिसाब से महाप्रभु के सिद्धांतों का पालन कर रहे थे, लेकिन जो असली महाप्रभु की शिक्षाएं हैं वो षड गोस्वामी द्वारा स्थापित की गई और नरोत्तम दास ठाकुर जी ने इसका प्रशिक्षण जीव गोस्वामी से प्राप्त किया। तो अब एक ही स्थान में सारे वैष्णव इकट्ठे हो गए और इस खेतरी उत्सव में जाहना माता के द्वारा ये सिद्धांत स्थापित किया गया। तो ये छह जो अर्च विग्रह इनको लगाया, उनकी स्थापना की गई, श्रीनिवास आचार्य जी ने अभिषेक किया और फिर नरोत्तम दास ठाकुर जी ने कीर्तन प्रारंभ किया। और ये कीर्तन था, ये बहुत ही विशेष कीर्तन था। नरोत्तम दास ठाकुर जैसे महाप्रभु ने बोला था कि मैं कीर्तन मेरा जीवन है और नरोत्तम दास ठाकुर इसकी सुरक्षा करेंगे, तो इस कीर्तन की शैली पद्मवली शैली बोलते हैं इसको। इसमें जो प्रारंभ में कीर्तन होता है बहुत ही धीमी गति से, इसको बोलते हैं गौर चंद्रिका, पहले महाप्रभु का गुणगान होता है, फिर धीरे 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 तीव्र होकर राधा कृष्ण की लीलाओं में प्रवेश करता है। तो नरोत्तम दास ठाकुर जी ने कीर्तन प्रारंभ किया और इतना मधुर कीर्तन था, इतना मधुर कीर्तन था, ये कीर्तन बढ़ता गया बढ़ता गया बढ़ता गया, एंडलेस चलता गया चलता गया। और जब ये कीर्तन बिल्कुल अपनी चरम सीमा में पहुंचा तो क्या हुआ, स्वयं चैतन्य महाप्रभु, नित्यानंद प्रभु, अद्वैताचार्य, गदाधर पंडित, शिवास, सबके सब पंच तत्व उस कीर्तन में सम्मिलित हो गए। देखिए, स्वयं महाप्रभु नित्यानंद प्रभु आ गए, चैतन्य महाप्रभु की सबके सब कीर्तन में आए और कीर्तन में नाच रहे हैं। कल्पना कीजिए, महाप्रभु नित्यानंद प्रभु, गदाधर पंडित, शिवास आचार्य और अद्वैताचार्य और भी सब पार्षद आके उस कीर्तन में नाच रहे हैं साक्षात, और सबके सब उनको देख पा रहे हैं। कितनी बड़ी कृपा है। तो जैसे कि अच्युतानंद है अद्वैताचार्य के पुत्र, वो देख रहे हैं कि उनके पिता अप्रकट हुए, काफी वर्ष हो गए, अब नाच रहे हैं, जैसे पहले युवावस्था में नाचते थे वैसे नाच रहे हैं, बिल्कुल पागल हो गए वो। फिर देखा श्रीपति और श्रीरधि ने, उनके भाई श्रीवास आचार्य, वो भी नाच रहे हैं। फिर जानवा माता ने देखा कि उनके पति नित्यानंद प्रभु कैसे नाच रहे हैं। तो सबके सब भक्त लोग एकदम आवेश में आ गए और कीर्तन चलता रहा, काफी रात्रि तक कीर्तन चलता रहा और स्वयं महाप्रभु उसमें नाचे। तो ये नरोत्तम दास ठाकुर जी की कितनी विशेषता है। तो अगर हम लोग भी प्रेम से कीर्तन करेंगे तो महाप्रभु आ सकते हैं, है ना। जैसे कि अंबिका कालन में हृदय चैतन्य प्रभु थे, तो जब वो कीर्तन महाप्रभु गौरांग महाप्रभु नित्यानंद प्रभु उनकी डांस पार्टी में आते नाचते थे, तो वो फिर उनको पीछे लाठी लेके भागते थे कि तुम बहुत शैतान हो, भाग जाओगे। तो इसी ढंग से कीर्तन हम प्रेम से भगवान को पुकारेंगे, निश्चित रूप से महाप्रभु संकीर्तन में भाग लेते हैं। तो पंच तत्वों ने पूरे रूप से नरोत्तम दास ठाकुर जी के इस कीर्तन में भाग लिया। और फिर जब कीर्तन समाप्त हुआ तो जानवा माता ने क्या किया, जानवा माता गुलाल लेके आई और इन अर्च विग्रह के ऊपर गुलाल अर्पण किया। और फिर सब भक्तों को थोड़ा इशारा मात्र ही करना था कि सब भक्तों ने क्या किया, एक दूसरे पर गुलाल फेंकना शुरू किया। तो होली उत्सव मनाया गया, तो खेतरी गांव में सब वैष्णव ने आपस में होली खेली। और उसके बाद जाना माता ने सबको बैठाकर अपने हाथों से प्रसाद खिलाया। देखिए क्या ये वैष्णव समाज है। तो फिर जाना माता ने सब भक्तों को अपने हाथ से बनाया प्रसाद खिलाया और सब भक्त लोग पूर्ण संतुष्ट हुए। तो ये खेतरी उत्सव 3 दिन तक चला। और ये पहला बारी ऐसा हुआ कि गौर पूर्णिमा उत्सव इतनी धूमधाम से मनाया गया। तो नरोत्तम दास ठाकुर जी कायस्थ परिवार में थे, तो अक्सर इनकी निंदा करनी शुरू हो गई कि ये तो शूद्र जाति के हैं और ये ब्राह्मणों को दीक्षा दे रहे हैं। तो देखिए उस समय ये था 15वीं-16वीं शताब्दी में कि जातिवाद काफी फैला हुआ था। तो इनके 2 मुख्य शिष्य थे, रामकृष्ण आचार्य और गंगा नारायण चक्रवर्ती, जो कि ब्राह्मण परिवार से थे। तो वहां के एक राजा थे, राजा नरसिंह, उनके पास कुछ ये जात ब्राह्मण गए। उन्होंने बोला ये क्या हो रहा है आपके राज में, एक शूद्र ब्राह्मणों को दीक्षा दे रहा है, ये देखो गंगा नारायण चक्रवर्ती और इनको ये 2 ब्राह्मण है, इनको एक शूद्र आपके उनके गुरु है, ये क्या हो रहा है, ये तो बिल्कुल समाज में उत्पात आ जाएगा। तो राजा नरसिंह ने सोचा कि चलो कुछ करना चाहिए। तो इन्होंने नरोत्तम जी को पत्र लिखा कि ये क्या हो रहा है। तो नरोत्तम जी ने बहुत ही विनम्र उत्तर दिया कि मैं बिल्कुल शास्त्रों के अनुसार चल रहा हूं, फिर भी अगर मुझ में कुछ गलती पाई जाएगी तो मैं अपने आप को ठीक कर लूंगा। तो इतना विनम्र उत्तर पाके राजा नरसिंह को लगा कि बिल्कुल ठीक कर रहे हैं। फिर भी इन्होंने अपने कुछ विद्वानों को भेजा कि आप जाइए और उनसे तर्क कीजिए। तो उसमें कहा जाता है कि जो रूप नारायण थे विद्वान तर्कवादी जिन्होंने जो जिनके पास गए थे रूप और सनातन के पास, वो भी गए यहाँ के पास रूप नारायण। तो एक और व्यक्ति के साथ लेकर गए कि मैं देख के आता हूं कैसे ये शूद्र जो गुरु है ब्राह्मणों को दीक्षा दे रहा है। तो क्या हुआ, जो उनके एक शिष्य थे गंगा नारायण चक्रवर्ती और रामचंद्र कविराज जी जो श्रीनिवास के आचार्य के शिष्य थे, इन्होंने एक योजना बनाई। इनको मालूम था ये रूप नारायण आ रहे हैं, तो खेतरी गांव के बाहर ही इन्होंने दो दुकानें खोल ली, अपने आप को ऐसे दुकानदार बना दिया, एक कुम्हार बन गए और एक सुपारी बेचने वाले बन गए और उनकी प्रतीक्षा करने लगे। तो आए रूप नारायण वहां पे, तो उन्होंने बोला ये सामान खरीदिए सामान खरीदिए सामान, उनको लपेट लिया किसी ढंग से और फिर उनसे ऐसे बातचीत करनी शुरू कर दी। तो बातचीत करते करते इन्होंने संस्कृत में बातचीत करनी शुरू कर दी। बोले यार अजीब है दुकानदार, यहाँ के एक साधारण गांव वाले इतनी उच्च कोटि की संस्कृत बोलते हैं तो क्या होंगे। तो संस्कृत बोलनी शुरू कर दी, फिर संस्कृत बोलते बोलते इन्होंने कुछ श्लोक बोले शास्त्रों के और फिर बातचीत करते करते बात नरोत्तम जी पे आ गई। बोले क्या लगता है ठीक कर रहे हैं शुद्ध? कले बिल्कुल ठीक कर रहे हैं, शुद्ध है, लेकिन क्या है कि भाई उन्होंने शास्त्रों से बताया कि जातिवाद तो है नहीं, तो उन्होंने भी कुछ श्लोक बताए रूप नारायण ने, तो कुम्हार के रूप में और सुपारी बेचने वाले के रूप में इन्होंने भी कुछ श्लोक बताए। तो श्लोक सुनाते सुनाते इन दो शिष्यों ने रूप नारायण को हरा दिया। तो जब बात राजा के पास पहुंची, बोला धिक्कार है तुम्हें, जब उसके शिष्यों ने उनको हरा दिया तो उनके पास क्या जाओगे आप? तो इसके बाद बेचारे चुपचाप हार मान गए। फिर बताया जाता है कि बाद में इन्होंने फिर रोहतमदास ठाकुर से स्वयं दीक्षा ग्रहण की। तो फिर भी कुछ लोग सुधरे नहीं। जब नरोत्तम दास ठाकुर जी अपना देह त्यागने लगे थे तो ये समाधि में चले जाते थे। तो काफी दिन हो गया ये समाधि में चले गए, नित्य लीला में भगवान की सेवा कर रहे हैं तरह। तो फिर लोग बोलने लगे देखो शूद्र था और ब्राह्मणों को दीक्षा दी, अब मरने वाला है, शूद्र की तरह ही मर जाएगा, ऐसा बोल रहे थे। तो इनके शिष्यों को बड़ा दुख हुआ कि ऐसा क्यों बोला जा रहा है। तो इनके शिष्यों ने प्रार्थना की कि आप कृपया करके माही वेश में आइए। तो फिर क्या हुआ, ऐसा चमत्कार हुआ, बताया जाता है कि नरोत्तम दास ठाकुर जी समाधि में बैठे हैं और उनके देह से एक बहुत ही स्वर्ण रंग का, स्वर्ण का ही बिल्कुल जनेऊ उत्पन्न हुआ। तो जो ब्राह्मण कह रहे थे कि ये शूद्र है ये ब्राह्मण नहीं है, तो उनको नजर आया कि जो स्वर्ण का जनेऊ उनके शरीर में प्रकट हो गया। तो उन्होंने सबने फिर उनको नमस्कार किया, प्रणाम किया कि नहीं आप स्वयं में सिद्ध वैष्णव है। तो देखिए इतने महान आचार्य थे नरोत्तम ठाकुर, और अंतिम समय में जब इनको देह त्यागना था तो उन्होंने अपने शिष्यों को बोला कि मेरे साथ आइए गंगा में स्नान के लिए। और जब गंगा में स्नान कर रहे थे तो उन्होंने बोला कि अंजलि भर भर के मेरे ऊपर डाली है। तो जैसे ही गंगा का पानी उन्होंने ऊपर डालना शुरू किया शिष्यों ने, तो उनके शिष्यों के सामने वो देख रहे हैं कि उनका पूरा देह के जितने भी अंग हैं वो धीरे धीरे दूध बन रहे हैं और दूध बन के बिल्कुल अप्रकट हो गए, गंगा में ही समा गए उसमें। तो उनके शिष्यों ने कुछ उसी दूध को इकट्ठा किया और फिर दूध की उस दुग्ध समाधि बनाई गई। तो ये है महान आचार्य नरोत्तम दास ठाकुर जी। तो नरोत्तम दास ठाकुर जी के जो दो प्रमुख ग्रंथ हैं वो है प्रार्थना और प्रेम भक्ति चंद्रिका। तो हम प्रतिदिन जो गाते हैं गुरु वंदना श्री गुरु चरण पद्म केवल भक्ति सदमा, ये नरोत्तम दास ठाकुर जी की प्रार्थना है प्रेम भक्ति चंद्रिका से। तो गोरक्षदास बाबा जी कहते थे किसी पास दो आने पैसे भी हैं तो उसको दो ही ग्रंथ खरीदने चाहिए, एक प्रार्थना और प्रेम भक्ति चंद्रिका। तो आज के दिन हम नरोत्तम दास ठाकुर जी से खूब प्रार्थना करें, क्योंकि भक्ति जो है बहुत ही सूक्ष्म विज्ञान है और हम लोग अपनी बुद्धि से अपनी इंद्रियों से अपने मन से इसको नहीं समझ सकते। इसके लिए तो महाजनों की विशेष कृपा ही चाहिए, तभी संभव है, अन्यथा हम अंधकार में ही भटकते रहेंगे। बिल्कुल भक्ति बिल्कुल अलग है, बिल्कुल हमारी इंद्रियों से परे है। ये समझ में आ जाए, दिव्य वस्तु कोई दिव्य व्यक्ति ही हमें समझा सकता है, ये हमारे वश की बात नहीं है। दिव्य जगत की बातों को समझना हमारे वश की बात नहीं है, कोई दिव्य जगत का व्यक्ति ही कृपा करके हमें समझा सकता है। तो रतनदास ठाकुर जी से आज हम प्रार्थना करें कि हमें वो बुद्धि प्रदान करें, हमें वो चेतना दें, ताकि हम श्रील प्रभुपाद जी की शरण ग्रहण करते हुए उनकी आज्ञाओं का पालन कर सकें और अपने जीवन को सिद्ध कर सकें। हमारे देखिए प्रभुपाद जी की विशेष कृपा है कि हम जानते हैं नरोत्तमदास ठाकुर जी कौन है। जब तक हम प्रभुपाद जी की शरण में थे ही नहीं, एक साधारण व्यक्ति को मालूम ही नहीं है, उनका प्रकटे क्यों हुआ है? बद जीवों का उद्धार करने के लिए। लेकिन ऐसे कितने बद जीव हैं जिनको मालूम है निरोध दास ठाकुर जी का प्रकटे हुआ है? ऐसे कितने बद जीव हैं जिनको मालूम है कि निरोध दास ठाकुर जी का आज प्रकटे हुआ है? किस लिए हुआ है? मेरे उद्धार के लिए। मैं बीमार हूं, मुझे ठीक करने के लिए निरोध दास ठाकुर जी आए हैं, हमें इस रूप से देखना है। कितने कम लोगों को मालूम है। तो हम कितने सौभाग्यशाली हैं कि नरोत्तम दास ठाकुर जी का जो प्राकट्य है वो हम जैसे जीवों को कृष्ण प्रेम देने के लिए हुआ है। तो इसलिए हमें बहुत धन्यवाद देना चाहिए, श्रील प्रभुपाद के प्रति हमें कृतज्ञ रहना चाहिए और हमेशा आज्ञाओं का पालन करते हुए कृपा की याचना करते रहें और भक्ति में आगे बढ़े। हरे कृष्ण। से कोई प्रश्न या टिप्पणी है? हाँ, गायत्री गायत्री दीक्षा होती है, उसमें गोपाल मंत्र होता है, राधा कृष्ण मंत्र होता है, गुरु मंत्र होता है। दशा भक्ति कैसा भक्ति अभी नहीं हो सकता? प्रभुपाद जी ने करके दिखाई ना वैसी भक्ति। कैसी भक्ति करते? कहाँ नहीं सिखाते? नरोत्तमदास ठाकुर जी मानसिक सेवा करते थे और ऐसी भक्ति अभी हम नहीं कर पा रहे हैं, है ना? क्योंकि नरोत्तमदास ठाकुर जी कोई साधारण जीव नहीं थे, उनके प्राकट्य की घोषणा चैतन्य महाप्रभु ने पहले से ही कर दी थी। हमारे प्राकट्य की घोषणा हम भगवान थोड़ी करते हैं, जो डॉक्टर भी करता है घोषणा वो भी गलत हो जाती है, है ना? हमारी घोषणा तो कौन करता है? कोई नहीं कर पाता। तो लिखा हुआ है उसमें, ग्रंथों में लिखा है कि लोकनाथ गोस्वामी ने उनको मंत्र दिए क्योंकि वो इस योग्य थे, तभी दिया गया। और इसीलिए आपका एक प्रश्न अच्छा है कि इस ढंग से हमें मेडिटेशन करना है, रागुणा का भक्ति कर सिद्ध देह से मेडिटेशन करें, भगवान की अंतरंग सेवा करें, तब हम पहुंचेंगे। लेकिन प्रभुपाद जी ने इस पूरी विधि को बहुत ही सरल बना दिया कि बिल्कुल स्थूल बुद्धि वाला व्यक्ति, काम क्रोध लोभ से ग्रस्त बिल्कुल पतित व्यक्ति, वो कैसे उच्चतम वस्तु को प्राप्त कर सकते हैं? तो इतना सरल बना दिया प्रभुपाद ने कि हम इस संकीर्तन यज्ञ में जुड़े और संकीर्तन यज्ञ में निस्वार्थ भाव से जुड़े। तो हमारा हर प्रत्येक कार्य हमारा संकीर्तन यज्ञ में समर्पित है। तो बहुत ही आसानी से प्रभुपाद ने बोला कि हम उच्चतम अवस्था को प्राप्त करेंगे। तो प्रभुपाद ने जो इस्कॉन में ये सिस्टम दिया है अंतर्राष्ट्रीय श्री कृष्ण महावंश संघ में, इस पूरे के पूरे सिस्टम में रागुणों का भक्ति इसके अंदर घुली हुई है, जैसे कहते हैं एम्बेडेड बोलते हैं, घुली हुई है, स्किन डिप है। ये चमड़ी को उखाड़ेंगे तो अंदर सब कुछ नजर आएगा। तो ऊपर से पैकिंग है वैदिक भक्ति की और अंदर पूरा रागुणों का भक्ति है। सुबह से हम शुरू करते हैं निकुंज योनो रति के लिए सिद्धि है ना, तुलसी महारानी से प्रार्थना करते हैं, यही निवेदन दरस सखीर अनुगत कर। ये सब रागुणों का भक्ति है, लालसा में प्रार्थना ही है सारे, और ऊपर से हम नियमों का हम पालन कर रहे हैं। तो अगर सही ढंग से ये करते रहेंगे तो निश्चित रूप से इस स्वरूप का विकास होगा और हम सेवाओं में जुड़ेंगे। डीटी वर्शिप सारी रागुणों का भक्ति है। तो ये सोचना कि हम यहाँ पे वो सेवा नहीं कर रहे हैं, ये गलत धारणा है। एक्चुअली इन बातों को पढ़कर सुनकर हम लोग बहुत ही चीपली लेते हैं इन बातों को। संघर्ष करना पड़ेगा, बिना मेहनत के नहीं मिलने वाली बात है, इतनी सस्ती नहीं है। इसके लिए मेहनत करना पड़ेगा, अपनों को योग्य बनाना पड़ेगा, इसलिए कृपा की आवश्यकता है। मेहनत साधना पूरी करनी पड़ेगी, नियमों का सही पालन करना पड़ेगा, उसके बाद ये अवस्था आएगी। तो हम लोग में एक कमी रहती है कि जब हम पूर्ववर्ती आचार्य के जीवन को पढ़ते हैं और आज के अपने वर्तमान जीवन को देखते हैं तो हम इसमें कोई लिंक नहीं देखते हैं। हमें लगता है कोई बस अलग जगत की कहानी है, मैं अलग जीवन जी रहा हूं, मेरी सोलह माला तो होती नहीं, सुबह मंगल आरती में आ नहीं पाता, ये पता नहीं कौन कौन सी बातें कर रहे हैं, दूध उबाल रहे हैं, हाथ जल गया, ये अलग ही बात है। मेरे तो चार नियम पालन होते नहीं और सोलह माला रूलों की होती है, रीडिंग होती नहीं, कुछ डांट पड़ती रहती है, सब उत्तर तरह की आ सकती है। तो हाँ सुन लिया कहानी, सुन गया छीड़ खत्म हो गई, कितने बारी ऐसी कहानियां सुनिए चले गए, कितने आविर्भाव तिरुभाव दिवस आए प्रकटे दिवस चले गए, मैं तो वहीं का वहीं पड़ा हूं। तो हमें कोई कनेक्शन नजर नहीं आता, फिर बोला जाता महाजन एक अदास अपन था, अब दूध उबाल नहीं सकता मैं, सोना वाला कर नहीं रहा, तो समझ नहीं आता भविष्य क्या है, मेरा होगा क्या। तो एक ऐसे एक इनसिक्योरिटी से कर क्या रहा हूं मैं, हो क्या रहा है। तो ऐसे में कोई आके बोलेगा मैं तुम्हें बताऊ तुम्हें क्या करना है, तुम भी इस तरह से दूध उबाल सकते हो, ये कर सकते हो, तो फिर हम भटक जाते हैं। तो हमें ये सोचना है कि हमारी स्थिति क्या है, अभी हम कितने पतित हैं, हमें पहले अपने आप को शुद्ध करना है, इस साधना का पालन करते हुए अपने आप को हम पहले शुद्ध करें, इस विधि पे पूरा विश्वास रखें। विश्वनाथ ठाकुर आप बताते हैं कि अगर आपको भक्ति की विधि में पूरा विश्वास नहीं है तो आप भक्ति करने के योग्य ही नहीं है, योग्य नहीं है। इतनी सरल विधि हमें प्राप्त हुई है और फिर हमें इस पर भी विश्वास नहीं है, संशय आत्मा विनश्यति, ऐसे संशय आत्मा का विनाश ही होगा। तो जो प्रभुपाद ने हमें विधि दी है इस पर पूरा दृढ़ विश्वास नहीं है तो विनाश्यति होगा ही विनाश, तो सब विश्वास रखें। और प्रभुपाद के जो शिष्यगण जो जुड़े हैं इस भक्ति में, जिन्होंने इसका पालन किया है, उन्होंने दिखाया है जिस ढंग से उन्होंने देह त्यागा है, किस ढंग से वो भगवान की लीला में प्रवेश किया है। हमारे पास प्रत्यक्ष प्रमाण भी है, शत प्रमाण भी है, तो अपना गलत अनुमान प्रमाण क्यों लगाए हैं ना। प्रत्यक्ष प्रमाण देखा है जिस ढंग से प्रभुपाद नित्य लीला में प्रवेश हुए, प्रभुपाद के शिष्य नित्य लीला में प्रवेश हुए, प्रत्यक्ष हमने देखा और शब्द भी सुन रहे हैं कि इस ढंग से पालन करेंगे हो जाएगा, फिर अपना अनुमान गलत क्यों लगाए। इसलिए गलत अनुमान लगाते हैं क्योंकि हम मेहनत नहीं करना चाहते। प्रभुपाद बोलते हैं डिवोशन कृष्णा कॉन्शियस इज नॉट फॉर लेजी एंड क्रेजी, सुस्त और पागल लोगों के लिए भक्ति नहीं है, सुस्ती को त्यागना पड़ेगा। तो कमी हमारे अंदर है और हम सिस्टम में कमी देखते हैं ना। हाँ प्रभु जी प्रभु सही बात बहुत अच्छे। महाप्रभु से या कृपालु है नित्यानंद प्रभु, और नित्यानंद प्रभु से कृपालु है श्रील प्रभुपाद। नित्यानंद प्रभु ने तो एक जगह ही मदाई को उद्धार किया, प्रभुपाद जी ने लाखों जगह ही मदाई का उद्धार किया। हम जगह मदाई नहीं थे क्या, सारे नियम तोड़ते थे, अधिकांशतः लोग जो कलयुग में हैं सब नियम तोड़ रहे हैं, तो जगह मदाई की तरह है, फिर भी हम हरि नाम ले पा रहे हैं। जिस ढंग से नरोत्तम दास ठाकुर जी ने संघर्ष किया, घर के अंदर कैद कर दिया और नंगे पांव भागे, हम ये संघर्ष करेंगे तो फिर हम एक्सपेक्ट करते हैं कि महाप्रभु हमारे लिए दूध लेके आएंगे। हम कीमत तो भरते नहीं और हम परिणाम चाहते हैं, कैसे होगा। जो रघुनाथ दास गोस्वामी जी ने संघर्ष किया, जो रूप और सनातन ने संघर्ष किया, हमको जेल में डाल दिया गया, इतनी पीड़ा दी गई, तो इस सब प्रभुपाद ने कितना संघर्ष किया। तो हम जो उनके प्रयास हैं वो तो देख नहीं रहे, हम सीधा परिणाम को देख रहे हैं कि परिणाम चाहिए तो कैसे मिलेगा। हाँ, अनुकरण करना चाहते हैं तो हमें अनुसरण करना है। तो प्रभुपाद की दिव्य स्थिति को जब तक हम नहीं समझेंगे, जन्म कर्म च मे दिव्यम, जब तक प्रभुपाद की दिव्य स्थिति को नहीं समझेंगे हम लोग का उद्धार नहीं हो सकता। ये कोई भावुकता की बात नहीं है, ये साइंस है, ये विज्ञान है। श्रद्धा, श्रद्धा से ही प्रेम विकसित होता है, श्रद्धा विकसित होकर प्रेम भाव, प्रेम तब श्रद्धा से ही उत्पन्न होते हैं। तो जब तक परम गुरु के चरणों में श्रद्धा नहीं है, अटूट श्रद्धा, तब तक हम भक्ति में आगे बढ़ ही नहीं सकते। अखंडित श्रद्धा होनी चाहिए बिल्कुल। तो वो बीमारी हमारी यहां पे है, इन्फेक्शन वहां पे है, दरार वहां पड़ी हुई है, तभी बिल्डिंग खड़ी नहीं हो रही, तो उसको ठीक करने है। तो भगवान से भी ज्यादा भगवान के भक्तों की दिव्यता को समझना और कठिन है। जगत गुरु श्रील प्रभुपाद की, श्री नरोत्तम दास ठाकुर की, नरोत्तम दास ठाकुर प्राकट्य दिवस महा महोत्सव की, निताय गोड प्रेम आनंदे।